धौला पुस्तक पांचवी लेक्चर नंबर 14। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं, हन्ताय मज्जहीनं, दशदशय चावदीहिरं पडमजिनं, वोक्षं नमिऊणन्तरं, नंतरुत्तुंगसन्नमै दुग्गेजम्। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है, जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई थी। इसके करता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। उसमें प्रथम खंड जो जीवस्थान नामक है, उसमें अपना विषय है अंतरानुगम, और ये पांचवी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 145 पर हम आ गए। 145 यहाँ लेशा मार्गणा की बात चल रही है, और हम लेशाओं में गुण स्थानों का अंतर देख रहे थे। तो हमने देखा कृष्ण लेशा में मिथ्या दृष्टि गुण स्थान का अंतर कितना है, तो कम से कम अंतर्मूर्त होगा, अन्य चौथे में जाके वापस लौटा। 145 वो बीच में नंबर्स बीच में होते हैं, हाँ, और कुछ कम 33 है किसके लिए, कृष्ण लेशा का, अपने क्राइटेरिया कृष्ण लेशा का चल रहा। नील लेशा में ना, कितना होगा, 17 हाँ 17 सागर, कुछ कम 17 सागर, और कपोत लेशा के लिए कुछ कम 7 सागर, क्योंकि वो तीसरे नरक के उत्कृष्ट आयु है, वहां से बात लेना है। और ये कैसा होता वो हमने देखा था। अभी 145 पृष्ठ पर सासादन की बात करेंगे। सासन सम्मा दिट्ठि, सम्मा मिच्छा दिट्ठिनम अंतरम केवचिरम कालादो हो दी नाना जीवम पड़ुच्च ओघम। जैसे हमने ओघ में हाँ देखो, आपका प्रश्न है, हमने वो लंबे काल तक एक इंद्रियों में घूम के आया हुआ जीव लिया है, और उसको अर्लीस्ट सम्यक तो प्राप्त कराना है। तो अभी कौन सा प्राप्त होगा, तो औपचमिक सम्यक तो प्राप्त होगा, इसलिए वो सम्मूर्छन वाला नहीं ले सकते। अगर गर्भज तीरियंचो में भी उत्पन्न कराया तो भी वो तो तीन पक्ष तीन दिन वगैरह वगैरह वो बात होती है, तो वो भी लंबा काल है। तो उनके लिए अर्लीस्ट क्या, तो देव में उत्पन्न कराना, तो एक इंद्रिय डायरेक्ट देव में नहीं जाते, तो असंगी का एक अंतर्मूर्त का भव किया, पर्याप्त पर्याप्त, हाँ, यानी असंगी में पर्याप्त हुआ, पांच पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ, फिर विश्राम लिया, फिर विशुद्ध हुआ, विशुद्ध नहीं, यहाँ विश्राम लिया, फिर आयु का बंध किया, और फिर उसके भवनवासी क्या आयु के बंध करने के लिए विशुद्ध हुआ, इसलिए वहाँ विशुद्ध हुआ लिया, हाँ अंतर्मूर्त, और फिर आयु का बंध भी अंतर्मूर्त, और फिर बाद में भी अंतर्मूर्त रुक कर फिर मरा, तो देव में जाते उनकी पर्याप्ति पूरी हुई, फिर विश्राम लिया, फिर विशुद्ध हुआ, फिर सम्यक प्राप्त, यही अर्ली से सबका मिलकर भी अंतर्मूर्त होगा। पांचवे गुणस्थान के लिए तो देव में नहीं उत्पन्न करा सकते, और सम्मूर्छन तिरियंचो में भी नहीं उत्पन्न करा सकते, क्योंकि इतने लंबे काल के बाद आया है। क्यों लंबे काल क्यों लेना है, क्योंकि उनको जो एकेंद्रिय की लंबी स्थिति पूरी करके आया है, वही त्रसों में या पंचेंद्रियों में या चक्षु इंद्रियों में लंबे काल तक पूरे पूरी उनकी स्थिति तक रहेगा, ये कंडीशन है। इसलिए असंख्यात असंख्यात लोक या अनंत काल ऐसा वहां लिखा था। अभी हम यहाँ तो अपनी बात लेशों की चली, वो बात अपनी चक्षुदर्शनी वगैरह में हुई, त्रसों में देखी, पंचेंद्रियों में देखी हमने। अब अपना विषय क्या है, लेशाओं का। अभी एक ही लेशाओं में लगातार, यदि अशुभ लेशाओं में लगातार रहने वाले तो नारकी है। मनुष्य तीरंज भले चौथे गुणस्थान तक छह लेशा होती है, अशुभी होती है, परंतु उनकी लेशा तो अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में पलटती है। नारकी ऐसे है कि उनकी जो अशुभ लेशा है वो पूरे लाइफ टाइम तक रहती है। देवों की भी अपनी अपनी शुभ लेशा पूरी लाइफ टाइम तक रहती है, ये विशेषता है। इसलिए उस लेशा में रहते हुए मिथ्यात्व तो गुणस्थान का अंतर कब होगा, जिस समय दृष्टि रहा और फिर वापस मिथ्यात्व में आए। इसलिए वहां जाने के बाद पर्याप्ति पूरी हुई, विशुद्ध हो वो सब लेना और सम्यक तो प्राप्त किया, तो मिथ्यात्व का अंतर चालू हो गया। अंत में फिर मिथ्यात्व में आया तो अंतर समाप्त हुआ, इस तरह लेना। ४४५ पेज पर अभी हम पढ़ रहे हैं। हमने मूल प्राकृत देखा था, नाना जीवम पड़ुच्चोगम। उक्त तीनों अशुभ लेशा वाले सांसाधन सम्य दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवन की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है। ओघ में कितने नाना जीव एक समय के अंतर से आते हैं, या पल्ले का संख्या कब है, छवली तो वो अलग है, वो काल है।
अच्छा, काल है, ये अंतर है।
और वो भी एक जीव का काल है, यहाँ तो अंतर की बात है। यह सूत्र सुगम है। अब एक जीव की अपेक्षा बताएंगे। एक जीवम पड़ुच्च जहन्नेन पलिदोमस असंख्य यदि भागो अंतोमोत्तम। उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्रमशः पल्लवों का असंख्यात अभाव। यानी अभी उसी लेशा में रहा, मिथ्यात्व में गया, यानी प्रथमोपशम करके सासाधन में जाके मिथ्यात्व में गया तो अंतर चालू हो गया। फिर दोबारा इतने साल के बाद फिर सम्यक तो प्राप्त किया प्रथमोपशम और फिर सासाधन में आया। लेशा तो वही रही ना उसकी नरकों में। और अंतर्मूर्त तीसरे के लिए अंतर कैसे लेंगे, पहले में जाके वापस आया है, चौथे में जाके वापस आया। यह सूत्र भी सुगम है। उक्कसेन 33 सत्तारस सप्त सागरो वमानी देशुनानी। हम लेशाओं में अंतर देख रहे हैं। उक्त जीवों का, उक्त ने किसकी बात चल रही है, अशुभ अपनी अपनी तीन लेशा है और सासाधन और समीमित दृष्टि। एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागरोपम, ये कृष्ण लेशा के लिए, 17 सागरोपम नील के लिए और 7 सागरोपम कापोत के लिए। अभी वो समझाएंगे। जैसे कृष्ण नील और कापोत लेशा वाले तीन मिथ्या दृष्टि जीव क्रमशः सातवीं पांचवी तीसरी पृथ्वी में उत्पन्न हुए, वो तो उत्कृष्ट आयु सहित उत्पन्न हो गया, ऐसा हम लेंगे। वह छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, पर्याप्तियों के ऊपर रफार नहीं चाहिए, पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, उपशम सम्यक को प्राप्त हुए, पुनः सासाधन गुणस्थान को गए। अंतर कब होगा, सासाधन से नीचे आएंगे तब अंतर होगा। तो उपशम का पूरा काल गिनेंगे तो वही सासाधन में से नीचे आने का काल है। पश्चात मिथ्यात्व को जाकर अंतर को प्राप्त हुए, पुनः जीवन के अंतर्मूर्त अवशिष्ट रहने पर उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुए। क्योंकि बाद वाला काल वो मिथ्यात्व में जाएंगे, आयु बांधेंगे, विश्राम करेंगे, मरेंगे, वो बाद का हम निकालेंगे उसमें से, पृथ्वी सागर में से। पश्चात सासाधन गुणस्थान में जाकर द्वितीय समय में मरे और मनुष्यों में उत्पन्न हो, ये सातवें नरक के लिए दूसरे समय में मरने की बात नहीं लेंगे, पांचवें के लिए तीसरे के लिए लेना, क्योंकि सातवें नरक का नारकी सासाधन में मरता नहीं है। हाँ, वो मिथ्यात्व में जाएगा, बाद में आयु का बंद करेगा, फिर रुकेगा, फिर मरेगा, तीर्यंच में ही जाएगा। अभी पहले समय में मरने वाले तो मनुष्य में ही जाने वाले हैं, क्योंकि अभी अभी विशुद्धि से नीचे आए हैं, तो वहां के जो एक समय में मरने वाले तो नारकी के लिए मनुष्य में जाएंगे। मनुष्य एक समय में मर के तो देव में चला जाता है, ख्याल में आई ना बात? मनुष्य तीर्यंच मरेंगे एक समय में तो देव में जाते हैं, यह उनकी बात नहीं चल रही। तीर्यंच में ही जाएगा और मिथ्यात्व तो में ही जाएगा, वो सासाधन के साथ भी नहीं निकल सकता। सम्यक्त्व के साथ तो निकलता ही नहीं है, सासाधन के साथ भी नहीं निकल सकता, ये नियम है। आयु का बंध छठे का सम्यक्त्व सहित भी निकल सकता है, सासाधन के सहित भी निकल सकता है। हाँ, उसमें निकलेगा तो मनुष्य में आएगा, सासाधन के लेट जाएगा तो तब तीर्यंच में जाएगा। देखो विशेषता, देखो यहाँ लिखते हैं ना विशेषता, विशेषता यानी वो सात्विक की बात बताएंगे। पहले में पहले इन जनरल बात करते कह दी कि सासाधन एक समय के लिए रहेगा, दूसरे समय मरकर मनुष्य हुआ। अब विशेषता इन्हें क्या डिफरेंस है वो बता रहे। विशेषता यह है कि सात्विक पृथ्वी के सासाधन समय दृष्टि नारकी मिथ्यात्व को प्राप्त होकर तिर्यंचों में उत्पन्न होते हैं, ऐसा कहना चाहिए। अब ये मिथ्यात्व में प्राप्त होकर तिर्यंचों में उसके लिए उन्होंने एक ही अंतर्मूल बढ़ाया है, उनसे मिथ्यात्व में जाएंगे, आयु का बंद करेंगे, फिर रुक कर फिर विश्राम लेकर फिर मरण होगा। इस प्रकार पांच, चार और चार अंतर्मूर्तों से कम क्रमशः 33, 17, 146 पेज पर और सात सागरोपम काल प्रमाण कृष्ण नील और कापोत लेशा वाले सासाधन समय दृष्टियों का उत्कृष्ट अंतर होता है। सासाधन गुणस्थान में जाकर रहने का एक समय अंतर मुहूर्त के ही भीतर प्रविष्ट है, इसलिए पृथक नहीं कहा। अन्यत्र जो एक समय के बाद मरकर बात बताई थी तो उसके उसी के काल में यानी उपशम समय के काल में हमने उसको गिना। इसी प्रकार तीनों अशुभ लेशा वाले सम्यक मिथ्या दृष्टियों का भी उत्कृष्ट अंतर जानना चाहिए। विशेषता यह है कि यहाँ पर छह छह अंतर्मूर्तों से कम, क्योंकि कोई तीसरे में नहीं मरता, तीसरे में एक अंतर्मूर्त जाएगा, फिर पहले में जाकर अंतर्मूर्त रहेगा, फिर बाद में मरेगा। ये छह छह अंतर्मूर्तों से कम 17 और 7 सागरोपम काल क्रमशः कृष्ण नील और कापोतलेशा वालों का उत्कृष्ट अंतर है। यहाँ पर यही समझना, उसको मिथ्यात्व का सम्यक मिथ्यात्व का अंतर देख रहे, तो सम्यक मिथ्यात्व में से उसको या तो मिथ्यात्व में ले जाओ या समय दृष्टि रखो, इस तरह से लेना। पर वो सम्यक मिथ्यात्व में जाने के पहले लास्ट में सम्यक तो सहित आयु बंद करेगा, तो फिर उसको समय दृष्टि बनाना पड़ेगा। मिथ्यात्व में आयु बंद कर फिर उसको तीसरे में ले जाओ, फिर वो पहले में आकर फिर अंतर्मूर्त में मरेगा। इमीडिएट एक समय में नहीं मर सकता, सासाधन में मर सकता है, तीसरे में मरता ही नहीं है। और ये नियम है, सम्यक्त्व से मिथ्यात्व में आया तो एक समय में नहीं मरेगा, अंतर्मूर्त रुक कर फिर मरेगा। तीसरे से पहले में आया या चौथे में गया तो अंतर्मूर्त रुक कर ही मरेगा। आगे का सूत्र, ये तो तीन अशुभ लेशाओं की बात हुई और उसमें हमने चारों गुणस्थानों के अंतर देखे। अब तेउलेशीय कोमलेशीयेषु मिच्छादिट्ठि, वो ठ निकालो, असंजत सम्मादिट्ठिनम अंतरम केवचिरम कालादो होदि नाना जीवम पड़ुच्चन अथ्य अंतरम निरंतरम। तेजोलेशा और पद्मलेशा वालों में मिथ्या दृष्टि और असंयत समय दृष्टि जीवों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवन की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। यानी ये तो ये गुणस्थान तो निरंतर वाले हैं और मनुष्यों चिरंचों में भी और देवों में भी इन लेशा में पहला भी गुणस्थान पाया जाता है, चौथा भी पाया जाता है। यह सूत्र सुगम है। एक जीवम पड़ुच्च जहन्ने न अंतो मुहूर्तम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त है। देखो यानी वो अन्य गुणस्थान में जाकर वापस लौटना है, तो ये तो अभी देवों में घटित करेंगे। मनुष्यों में तो लेशा पलटेगी। जैसे तेजो लेशार पद्म लेशा वाले, ये हिंदी पढ़ा ना, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्ति। तेजो लेशार पद्म लेशा वाले मिथ्या दृष्टि और सम्य दृष्टि चार जीव, ये चार कैसे हुए ब्रह्मा? मिथ्या दृष्टि दो, तेजो लेशा पद्म लेशा और सम्य दृष्टि दो, या तेजो लेशा में दो लेना मिथ्या दृष्टि सम्य दृष्टि, पद्म लेशा में दो लेना मिथ्या दृष्टि सम्य दृष्टि, यानी पहला और चौथा गुणस्थान वाले। अन्य गुणस्थान को जाकर सर्व जघन्य काल से लौट कर उसी गुणस्थान को आ गए। पहले वाला या तीसरे में जाके आया, चौथे में जाके आया, और चौथे वाले के लिए वो जाते पहले में जाके आया, तीसरे में जाके वापस आया। इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। उक्कस से न बे अठारस सागरोमाने सादिरे, यानी उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर साधिक दो सागरोपम, ये किसके लिए बताया होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, साधिक दो सागरोपम किसके लिए बताया? कौन सी लेशा वाले के लिए बताया? तेजो लेशा के। और साधिक अठारह सागरोपम पद्म लेशा वाले, क्योंकि सहस्रार की उत्कृष्ट आयु है और ये सौधर्म ईशान की उत्कृष्ट आयु है साधिक दो सागरोपम। और वो साधिक भी कैसे होता है? घाता युष्क की अपेक्षा, किसी जीव ने पहले अधिक आयु बांधी थी और बाद में उसने घात हुआ उस आयु का, तो सौधर्म ईशान के उत्कृष्ट आयु जो बनती है वो दो सागर की बनती है, तो उसमें आधा सागर माइनस अंतर्मूल इतना अधिक हो गया। ये हमने पहले इसकी चर्चा की, पल्ले का संख्या तो अभाग ज्यादा। जैसे तेज और पद्म लेशा वाले दो मिथ्या दृष्टि जीव साधिक दो सागरोपम और साधिक अठारह सागरोपम की आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुए। आप कहेंगे मिथ्या दृष्टि को साधिक दो, साधिक कितना ही कहा, वो कितना साधिक का प्रमाण है वो बात नहीं कही। छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो और सम्यक्त को ग्रहण कर अंतर को प्राप्त हुए। क्योंकि मिथ्यात्व का अंतर है तो सम्य दृष्टि हुए, तो मिथ्यात्व का अंतर चालू हो गया। पुनः अपनी स्थिति प्रमाण जीवित रहकर अपने आयु प्रमाण, आयु के अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त हुए, क्योंकि वहीं रहते हुए उनको आप कहेंगे मनुष्य में लाओ ना, बाद में मिथ्यात्व में ले जाओ, तो कहते मिथ्या दृष्टि जीव वहाँ सम्यक्त्व सहित आता है तो उसकी मनुष्य में तो भले उस समय को के सहित आ सकता है उसी लेशा में, परंतु वो लेशा पलट जाएगी जल्दी, अपर्याप्त अवस्था में लेशा पलट जाएगी और वो मिथ्यात्व में तो बाद में जाएगा, तो अपनी वही लेशा नहीं रहेगी, इसलिए देव में रहते हुए उसको मिथ्यात्व में ले जाएंगे। अंत में मिथ्यात्व को, आयु के अंत में मिथ्यात्व को प्राप्त हुए और मिथ्यात्व में प्राप्त होते एक समय नहीं हुए मरे, इसलिए चौथा अंतर्मूत लिखा ना, मिथ्यात्व में जाकर अंतर्मूत रहे बाद में मरे। मिथ्या दृष्टि, अगर मिथ्या दृष्टि ने घाता युष्क किया है तो पल्ले का असंख्यात्व भाग ज्यादा। इसी प्रकार साधिक दो सागरोपम काल तेजो लेशा वाले मिथ्या दृष्टि का और साधिक अठारह सागरोपम पद्म लेशा वाले मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर प्राप्त हो गया। यानी दोनों के लिए कितने कितने अंतर्मूत होते वो बात बताई उन्होंने। इसी प्रकार तेज और पद्म लेशा वाले असंयत सम्य दृष्टि जीव का भी अंतर कहना चाहिए, उसमें सम्यक्त्व का और एक अंतर्मूत सम्यक्त्व से फिर युक्त हुए तभी उनका अंतर चालू हो गया और अंत में जाके उसने सम्यक्त्व प्राप्त किया। विशेषता यह कि पांच अंतर्मूर्तों से कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण अंतर होता है, क्योंकि अंत में उसने प्रथम उपशम प्राप्त किया। इसलिए पहले बार सम्यक तो प्राप्त होकर गिरा, फिर पूरी लाइफ टाइम तक मिथ्या तो में रहा, अंत में प्रथम उपशम प्राप्त किया, सासदन में जाकर मर गया। इस तरह से हम कह सकते हैं। विशेषता है कि पांच अंतर्मूर्तें से कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण अंतर होता है। आगे शासन सम्मादिथि सम्मा मिच्छा दिच्छिनम अंतरम केव चिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्चो उगम। तेजो लेशा वाले और पद्म लेशा वाले सासादन सम्य दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर ओक के समान है। यह सूत्र सुगम है। कितना होता है? एक समय से लेकर पल्यकाल संख्या तक, दोनों के लिए, दोनों गुणस्थानों के लिए और दोनों देश। हाँ, तीसरे के लिए अंतर्मूर्त वो एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर है, नाना जीव में एक समय। अब 148 पृष्ठ पर आते हैं। एक जीवम पड़ुच्च जघन्य न पलिदोमस असंख्य यदि भागो अंतोमूर्तम। ये सासाधन और समय मिथ्या को, इसलिए दो अलग अलग ऑप्शन बताए। उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्रमशः पल्यपम का असंख्यात भाग और अंतर्मूर्त है। यह सूत्र भी सुगम है। उक्कसेन वे 18 सागरोवमानी साधिरेयानी। उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर क्रमशः साधिक दो सागरोपम, वो तेजोलेशा के लिए, और 18 वो भी साधिक लिखे, साधिक शब्द दोनों के लिए, साधिक 18 सागरोपम है जो पद्मलेशा वाले का। जैसे तेज और पद्मलेशा वाले दो सासादन समय दृष्टि जीव अभी डायरेक्ट सासादन के साथ ही वहां उत्पन्न कराना है और एक समय में वो मिथ्यात्व में चले जाएंगे तो सासादन का अंतर घटित होगा। साधिक दो सागरोपम और साधिक 18 सागरोपम की आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुए, वहां एक समय रहकर, वहां इन्हें सासादन में, दूसरे समय में मिथ्यात्व को जाकर अंतर को प्राप्त हुए। आयु के अंत में दोनों ही उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त हुए, पश्चात सासादन गुणस्थान को जाकर दूसरे समय में मरे। यानी वहां सासादन का एक समय ही लिया, इस तरह अंतर उनका बढ़ाया। इस प्रकार दो समय कम साधिक दो सागरोपम और साधिक 18, यानी दो समय कम यहां पर भी लगाना, दो समय कम साधिक 18 सागरोपम उक्त दोनों लेशा वाले सासाधन समय दृष्टि जीवों का उत्कृष्ट अंतर होता है। ये बात समझ में आई? सासाधन के साथ जन्म लिया था, एक समय में मिथ्यात्व में गया और अंत में फिर प्रथम उपशम करके सासाधन में आए और एक समय में मरे, तो साधिक जितनी आयु उनकी साधिक दो या साधिक 18, उसमें से दो समय कम करना केवल। इसी प्रकार उक्त दोनों लेशा वाले सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों का भी अंतर जानना चाहिए। विशेषता यह है कि इनके 6 अंतर्मूर्तों से कम अपनी उक्त स्थितियों प्रमाण अंतर होता है, क्योंकि वहां जानेंगे। हाँ, सम्यक यानी सम्यक मिथ्यात्व को जाएंगे ना, सादी मिथ्या दृष्टि को वहां उत्पन्न कराना है, फिर सम्यक मिथ्यात्व प्राप्त करने के लिए वो भी वहां गया, फिर पर्याप्त हुआ, फिर विश्राम लिया, फिर विशुद्ध हुआ, फिर तीसरे में गया और तीसरे में जाकर फिर नीचे आया, तब अंतर चालू हो गया। तो पहले तो 4 अंतर्मूर्त पहले गए, अंत में फिर उसको तीसरे में ले जाना है, तो या तो बीच में समय को प्राप्त करके शादी बना के फिर उसको भेजो या मिथ्यात्व के साथ भेजो। तो जहाँ जो आयु तो पहले ही बंधा नहीं, तो या तो मिथ्यात्व में जाकर मरेगा या तो समय, यानी वहां पर भी तीसरे का अंतर्मूर्त और मिथ्यात्व या समय का अंतर्मूर्त, इससे दो मुहूर्त अंतर्मुहूर्त वहाँ और पहले चार अंतर्मुहूर्त छह अंतर्मुहूर्त होते हैं। संजदा संजद पमत्त अपमत्त संजदानम अंतरम केवचिरम कालादो हो दी नाना एक जीवम पड़ुच्छन अत्यंतरम निरंतरम। मनीषा बेन आपको बताना है कि पांचवे छठे सातवें की बात है, नाना जीवन की अपेक्षा अंतर नहीं बताया क्योंकि वो गुणस्थान तो हमेशा ही पाए जाते हैं। एक जीव की अपेक्षा भी अंतर नहीं बताया, ऐसा क्यों? तो क्या हुआ उससे? बराबर है उसका, क्यों अंतर क्यों नहीं होता? हाँ ब्रह्मा, लेशा बहुत पलट जाती है जल्दी जल्दी, यानी जो काल है अन्य गुणस्थान में जाकर लौटने का उसमें तो तीनों लेशाओं का पलटना होगा, पीत पद्म और शुक्ल, क्योंकि ये मनुष्य तीरेंचो ये संजदा संजय तो मनुष्य तीरेंचो में होगा और बाद मुनि तो मनुष्य में हो गए, तो उनकी लेशाएं तो बहुत जल्दी पलटती, जैसे हमने योग पलटता है देखा था, कषाय पलटते हैं, तो ये बहुत योग की भी बात की थी ना पहले। नीचे पढ़ते हैं, देज और पद्म लेशा वाले संहिता संयत प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत जीवों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, क्योंकि उक्त गुणस्थान वाले नाना जीवों के प्रवाह का कभी विच्छेद नहीं होता, यानी अन्य अन्य जीव पांचवें छठे सातवें में तो हमेशा रहेंगे ही रहेंगे, कभी मुनि का अभाव हो जाएगा ऐसा कभी होगा ही नहीं। हम हमारे आजू बाजू में कोई नहीं दिखते तो अभाव हो गया मानते, वो नहीं मानता।
यहाँ
क्योंकि अन्य गुणस्थान में जाके आते समय बहुत बार लेशा परिवर्तन होता है, पीछे पद्म फिर शुक्ल, वही लेशा रहते हुए वापस उतने काल में नहीं आ सकता, यानी पांचवे वाला सातवें में गया, सातवां छठवां गया, फिर उन्हें वापस नीचे आया, उतने में कितनी बार उसका लेशा परिवर्तन होगा, या छठे वाला भी सातवें में जाकर वापस आता है उसमें भी लेशा का परिवर्तन होता है। अब शुक्ल लेशा वाले की बात उन्होंने अलग से ली, शुक्ल ऐसी ऊपर है क्या? हाँ, प्रवाह का कभी विच्छेद नहीं होता ये पढ़ा था, तथा एक जीव की अपेक्षा भी अंतर नहीं है क्योंकि लेशा के काल से गुणस्थान का काल बहुत होता है ऐसा उपदेश पाया जाता है, जैसे योग में भी देखा हमने, कषाय में भी देखा। अभी शुक्ल ऐसी मिच्छा दिट्ठि असंजद सम्मा दिट्ठिनम अंतरम केवचिरम कालादो हो दी नाना जीवम पड़ुच्छन अत्य अंतरम निरंतरम। शुक्ल लेशा वालों में मिथ्या दृष्टि और असंयत समय दृष्टि जीवों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। यह सूत्र सुगम है। एक जीवम पड़ुच्छ जहन्येन अंतमोत्तम, एक जीव उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मोत्त है। ये कहाँ पर घटित होगा? कैसे? वो लेशा नहीं पलटेगी? हाँ, तो अंतर कैसे सिद्ध होगा? शुक्ल लेशा के हाँ, जहाँ देव शुक्ल लेशा वाले मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि जहाँ दोनों ही पाए जाते हैं वहां तक, तो कहाँ तक लेंगे? नवे ग्रह तक ये पॉसिबल है, समझ में आई बात? शुक्ल लेशा तो कायम है थ्रू आउट लाइफ टाइम तक, तो मिथ्या दृष्टि चौथे में जाके वापस आया, चौथा है वो नीचे के गुणस्थान में जाके वापस आए, तो ये संभव है। तो उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मोत्त है। जैसे शुक्ल लेशा वाले मिथ्या दृष्टि और समय दृष्टि दो देव कहा ना, अन्य गुणस्थान को जाकर जघन्य काल से विवक्षित गुणस्थान को प्राप्त हुआ, इस प्रकार अंतर्मूर्त काल प्रमाण अंतर लब्ध हो गया। वो सब कंडीशन लगाए थे वो यानी शादी मिथ्या दृष्टि है, बहुत बार वो उसने सम्यक तो प्राप्त किया, वो जल्दी करेगा ना इसलिए, और फिर वो पहले में आकर बहुत अल्पकाल में वापस चौथे में आ जाता है। उक्त सेना 31 सागरोमानी देशोनानी, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 31 सागरोपम है। आशा बहन ऐसा क्यों कहा, 31 सागर तक ही क्यों लिया, देव तो शुक्ल लेशा वाले 33 सागर तक होते हैं, तो ऐसा क्यों लिखा है आपको, आपको विचार करना है। मनीषा बहन आप सोच सकती, देवों की उत्कृष्ट आयु कितनी, शुक्ल लेशा वाले 33 सागर, तो उनको क्यों नहीं लिया। हाँ बोलो बोलो, विचार करो तो मुझे मिलेगा उत्तर। बराबर है, बोलो आप क्या है, ऊपर के सारे चौथे गुणस्थान वाले होते हैं, वो नीचे आना संभव ही नहीं, यानी जहाँ ये चारों ही गुणस्थान हो गए, ये पहला और चौथा जहाँ होगा तभी तो उसका अंतर होगा कि नहीं, तो वो तो ग्रेवेट तक ही हो सकते हैं, अनुदिश और अनुत्तरों में सारे ही समय दृष्टि थ्रू आउट लाइफ चौथा गुणस्थान, तो वहाँ उसका अंतर होने का सवाल ही नहीं है, इसलिए यहाँ तक लिया। हमने ये भी देखा मिथ्यात्व अवस्था में जीव वो द्रव्यलिंगी होकर ग्रेवेग तक जा सकता है, यानी वहाँ मिथ्यात्व में भी उत्पन्न हो सकता है, समित्व में भी उत्पन्न हो सकता है, उसकी बात नहीं है, परंतु जहाँ गुणस्थानों का पलटना कब पॉसिबल है, अगर वो मिथ्यादृष्टि समय दृष्टि दोनों हो गए तो ही होगा। आप दोनों को इसलिए पूछा, इन्होंने बहुत बार सुनी हुई बात, विचार करेंगे तो पाएंगे। नहीं छोड़ भी सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। हाँ जहाँ श्रेणी चढ़ के उतरा उसका छूट सकता है, तो क्या ग्रेवे को में छूटने को क्या अंतर लगे। हाँ ये बात है कि वहाँ समय दृष्टियों की संख्या ज्यादा है। उक्त सेना पर है ना 31 सागरोमणी देशोनानी, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 31 सागरोपम है। जैसे शुक्ल लेशा वाले दो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी जीव, द्रव्यलिंगी शब्द डाला, 31 सागरोपम की स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुए, छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, सम्यक्त को प्राप्त हुए, उनमें से एक मिथ्यात्व को जाकर अंतर को प्राप्त हुआ, यानी वो चौथे गुणस्थान को अंतर किया, मिथ्यात्व गया तो अंतर चालू हो गया, दूसरा जीव सम्यक्त्व के साथ ही रहा, सम्यक्त्व के साथ रहा उसका अर्थ उसने मिथ्यात्व का अंतर करके वो समय दृष्टि रहा, आयु के अंत में यथाक्रम से दोनों ही जीव मिथ्यात्व और सम्यक्त्व को प्राप्त हुए, जो समय दृष्टि था वो मिथ्यात्व में गया, जो मिथ्या दृष्टि था वो समय को प्राप्त किया, अपने अपने गुणस्थानों का अंतर मिला। इस प्रकार चार अंतर्मूर्तों से कम देखो दो थे जीव, एक मिथ्यात्व को जाकर अंतर को प्राप्त हुए, एक जीव मिथ्यात्व में रहा और दूसरा जीव सम्यक्त्व के साथ ही रहा। दोनों ने ही वहां जाकर सम्यक्त्व प्राप्त किए, सम्यक्त्व के साथ उत्पन्न ही नहीं कराया, सम्यक्त्व के साथ उत्पन्न करा के मिथ्यात्व में नहीं ले गए, क्योंकि यहाँ से जो सम्यक्त्व के साथ जाएगा द्रव्यलिंगी मुनि, और वहां उत्पन्न होने के बाद इतने जल्दी मिथ्यात्व में नहीं जाएगा, नहीं नहीं इतने जल्दी नहीं जाएगा, मगर जो मिथ्यात्व के साथ उत्पन्न हुआ है वो वहाँ जल्दी समय तो प्राप्त करके मिथ्यात्व में जा सकता है। हाँ दोनों मिथ्या दृष्टि वहाँ उत्पन्न हुए हैं, ये लिखा ना, दो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी, कंडीशन ही पहले डाली, पहले भी हमने इस पर चर्चा की थी कि समय तो से ही उत्पन्न कराते और बाद में मिथ्यात्व में ले जाते ना, तो जल्दी अंतर होता नहीं होता, क्योंकि देव में उत्पन्न हुए हैं तो उनके संक्लेश क्यों हो गए, सम्यक्त्व के साथ उत्पन्न होने वाले देवों में ताबड़तोड़ मिथ्यात्व में क्यों जाएंगे, वो तो लंबे काल के बाद जाएंगे, यानी वो जो कोई अंतर्मुख छोटा बड़ा होगा, इसलिए इनको छू। हाँ देखो इस पर पेज नंबर 150 सेकंड लाइन, इस प्रकार चार अंतर्मूर्तों से कम 31 सागरोपम काल शुक्ल लेशा वाले मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर है और पांच अंतर्मूर्तों से कम 31 सागरोपम काल असंयत समय दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर है, क्योंकि उसको फिर सम्यक्त्व को प्राप्त कराना है ना। देखो देखो मिथ्यात्व के गिनो, देखो मिथ्यात्व के गिनते पहले छह पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ एक, विश्राम ले दूसरा, सम्यक्त्व को विशुद्ध हो तीसरा अंतर्मूर्त, सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ चौथा अंतर्मूर्त। हाँ मिथ्यात्व में जाने पर अंतर को प्राप्त हुआ, यानी सम्यक्त्व में अंतर्मूर्त रहा ना वो, तब जाके मिथ्यात्व में गया, उसका अंतर चालू हो गया। यानी सम्यक्त्व का अंतर्मूर्त उसके लिए गिनना है, वो चार अंतर्मूर्त है और आयु के अंतर अंत में एक मिथ्यात्व गया, मिथ्यात्व को जाते ही उसका तो अंतर तो समाप्त हुआ। और उसमें तो वो रहेगी ना अंतर्मूर्त। देखो फिर से पर्याप्त हुआ, विश्राम लिया, विशुद्ध हुआ, सम्यक्त्व प्राप्त हुआ, सम्यक्त्व को प्राप्त होते ही मिथ्यात्व का अंतर वहां शुरू हो गया। उसके लिए तीन पहले अंतर्मुख, पहले तीन अंतर्मुख। देखो मिथ्यात्व का अंतर कैसे लिखा, यानी अंतर्मुख छह पर्याप्ति से पर्याप्त हुआ, विशुद्ध हो विश्राम लिया, तीसरा अंतर्मूर्त में विशुद्ध हुआ, विशुद्ध होने के बाद समय को प्राप्त किया तो उसका अंतर चालू हो गया, यानी पहले तीन अंतर्मूर्त गए। अब लास्ट में जो मिथ्यात्व में गया था ना, ये समय को प्राप्त हुआ था, नहीं नहीं वो कंटिन्यूस समय को मेरा, हाँ अंत में वो मिथ्यात्व में गया। अंत में मिथ्यात्व में जाकर एक अंतर्मूर्त रहा और बाद में मरेगा, चार हुए ना मिथ्या दृष्टि के लिए, चार चार अंतर्मूर्त और सम्य दृष्टि के लिए असंयत का अंतर। देखो पहला पर्याप्ति का, दूसरा विश्राम का, तीसरा विशुद्धि का, चौथा सम्यक्त्व का, क्योंकि सम्यक्त्व में अंतर्मूर्त पूरा रहा ना, बाद में फिर मिथ्यात्व में आया। तो मिथ्यात्व में पूरे लाइफ टाइम तक रहा और लास्ट में सम्यक्त्व प्राप्त किया। तो सम्यक तो प्राप्त किया तो उसमें अंतर्मूत रहकर फिर मरेगा ना, बोले सासाधन भी क्यों ना मरे, तो उसका प्रथमोक्षम का तो वहां तो अंतर्मूत गिनना। समझ में आती है बात, मिथ्यात्व का अंतर सम्यक तो प्राप्त होते ही शुरू हुआ था, अंत में दोनों के लिए अंतर्मूत लेना, शुरुआत में समय दृष्टि के लिए चार अंतर्मूर्त का अंतर के लिए चार अंतर्मूर्त, मिथ्या दृष्टि के लिए तीन, तीन प्लस वन चार हुए और ये चार प्लस वन पांच हुआ। अंत में दोनों के लिए अंतर्मुत अंतर्मुत अंतर रखना, और वहाँ ऐसा ही सम्यक को प्राप्त करा के उसको सासाधन में मरेगा वो, तो वो सम्यक का अंतर्मुहूर्त लेंगे हम। यानी उसने मिथ्यात्व में आयु बांधी और सासाधन में मरा, ये दो बात हो सकती है। हाँ, ये हम 150 पेज पर अभी नया सूत्र पढ़ेंगे। शासन सम्मादिथि सम्मा मिच्छादिथिनम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्चो उगम। शुक्ल लेशा वाले सासाधन सम्य दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवन की अपेक्षा अंतर ओघ के समान है। क्या है ओघ के समान मनीषा बेन? जगन अंतर कितना है? नाना जीव, हाँ, जैसे ओग में देखते हैं, अलग कभी भी देखते हैं, नारकी में देखें, कहीं पर भी देखेंगे एक समय, और अधिक से अधिक पल्ले का संख्या तो यह सूत्र भी सुगम है। यानी कोई जीव सासाधन में न आया अधिक लंबे काल तक तो कितना टाइम हो सकता है पल्ले का असंख्या का, एक जीव की अपेक्षा आप बताएंगे। एक जीवम पड़ुच्छ जहन न पलिदो उमस असंख्य यदि भागो अंतो मुहूर्तम। उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर क्रमशः पल्लकों का असंख्यात्वा भाग और अंतर्मुहूर्त है, यह सूत्र भी सुगम है। और ये भी देवों में ही होगा, क्योंकि एक ही जीव उसी लेशा में रहते हुए इतने लंबे काल तक तो देवों में ही रह सकता है, वो शुक्ल लेशा वाले देवों में लेना ही है। उक्कस्य न 31 सागरोमाणी देशुनानी, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 31 सागरोपम है, यह सूत्र भी सुगम है। सासाधन का बताओ, एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर सासाधन की अपेक्षा बताना। हाँ, सासाधन के साथ उत्पन्न करना, पहला एक समय और लास्ट समय, दो समय कम 31 तक, और तीसरे गुणस्थान के लिए वहां मिथ्यात्व में उत्पन्न कराओ और फिर वो विशुद्ध होकर तीसरे में पहुंचा, और फिर लास्ट में एक बार वो तीसरा प्राप्त करके फिर मिथ्यात्व में आकर या सम्यक्त्व के साथ मरा, यह सूत्र भी सुगम है। मेरा प्रश्न है, ये जैसे तीन अशुभ लेशा को एक साथ लिया था, ऐसे इनको क्यों नहीं लिया एक साथ? पलटने दो ना, तीन कृष्ण लेशा वालों, कृष्ण दी तीन की बाकी ना नरकों के, हर एक की अपनी अपनी स्थिति अलग अलग बता दी, तो यहाँ पर भी बताते ना। वहाँ पर भी पांचवा छठे सातवा था ही ना अलग से, हाँ एक से सात थे, इसमें एक से
चार
शुक्लेशन। गुणस्थान कितने? शुक्लेशा वालों के गुणस्थान कितने? एक से 13, 13वें में भी है ना श्रेणी से, वो तो शुक्लेशा ही लेना है। और 14वें में कौन सी होगी? लेशा नहीं होती। दूसरी बात क्या है, ये जो साधिक शब्द लगाया था ना पहले और चौथे के लिए, पीत और पद्म के लिए, साधिक दो सागर साधिक, वो यहाँ साधिक शब्द नहीं लगता, वो तो सहस्रार तक ही लगता है, यानी साधिक 18 सागर तक, तो इसलिए वो तो एग्जैक्ट 31 सागर की बात है, इसलिए भी उसके साथ एक साथ वो बात नहीं करती। एक सौ 51 पृष्ठ पर, ये नीचे का पढ़ा ना हमने, सूत्र सुगम है। अभी पेज नंबर 151। संजदा संजद पमत्त संजदानम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना एक जीवम पड़ुच्छ नत्य अंतरम निरंतर। जैसे हमने पीत पद्म में देखा था एक तरह नाना जीवों की अपेक्षा तो हमेशा हो गए ही पांचवे छठे सातवें गुणस्थान में, एक जीव की अपेक्षा अन्य गुणस्थान को जाकर लौटते लौटते शुक्ल का नील वगैरह हो जाएगा, पलट जाएगी, इसलिए उसी लेशा के रहते हुए ये संभव नहीं। अंतर शुक्ल लेशा वाले संयता संयत और प्रमत्त संयतों का अंतर कितने काल तक होता है? केवल प्रमत्त लिया अप्रमत्त नहीं लिया, नाना और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, क्योंकि उक्त गुणस्थानवर्ती नाना जीवों के प्रवाह का कभी विच्छेद नहीं होता तथा एक जीव की अपेक्षा भी अंतर नहीं है, क्योंकि लेशा के काल से गुणस्थान का काल बहुत होता है ऐसा उपदेश पाया जाता है। अभी हमने पढ़ा नहीं है सातवें गुणस्थान का अंतर कैसा कहेंगे एक जीव की अपेक्षा? नहीं होगा, नहीं होगा। आप क्या कहते हैं? लक्ष्मी बोलो। अरे श्रेणी चढ़ के उतारा ना, फिर सातवें वाला चढ़ गया और फिर उतरा सातवें में आया, सातवें से आठवां गया, आठवें से नौवां, दसवां, ग्यारहवां, शुक्ल ही लेशा है ना थ्रू आउट। सातवें में तो अंतर घटित होगा। देख अब ये देख, अभी अपमत्त की बात पढ़ेंगे। अपमत्त संजदानम केवचिरम कालादो होदी अंतरम केवचिरम कालादो, नाना जीवम पड़ुच्च नत्य अंतरम निरंतरम। शुक्ल लेशा वाले अप्रमत्त संयतों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, यह सूत्र सुगम है। एक जीवम पड़ुच्च जहन्येन अंतो मुहूर्तम, ऊपर क्या लिखा था? छठे के लिए नत्य अंतरम, सातवें में जाकर आता है फिर तो उसकी लेशा पलटेगी, सातवें को ऊपर भेजो ना, छठे में मत लाओ। हाँ, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। जैसे शुक्ल लेशा में विद्यमान कोई एक अप्रमत्त संयत उपशम श्रेणी पर चढ़कर अंतर को प्राप्त हो सर्व जघन्य काल से लौटकर अप्रमत्त संयत हुआ, इस प्रकार अंतर प्राप्त हो गया। अभी जो जितना काल है वो तो निश्चित है श्रेणी का, कोई जल्दी कोई लेट ऐसा कुछ नहीं है। वो सातवें से आठवें के में गया तो अंतर जल्दी, आठ नौ दस ग्यारह दस नौ आठ, छठे से बहुत छोटा काल नहीं, उससे संख्या गुना छठे का काल है। वही सातवां अगर उत्कृष्ट अंतर के लिए छठे में भेज कर लाना कि नहीं वापस? नहीं लाना, उसमें लेसा पड़ेगी। उपकसम अंतो मुहूर्तम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। तो यह उत्कृष्ट अंतर कैसा घटित करेंगे? वही होगा, वही उपशम श्रेणी का ही अंतर होगा। इसका अंतर भी जघन्य अंतर प्ररूपणा के समान है, विशेषता है उसमें भी दीर्घ काल लिया, सर्व दीर्घ कालात्मक अंतर्मूर्त द्वारा उपशम श्रेणी से उतरे हुए जीव के उत्कृष्ट अंतर कहना चाहिए। हाँ, पूर्वकरण का अलग होता है क्योंकि ऊपर के गुणस्थान तो सेम ही होता है, या उतरते समय कोई फर्क पड़ता होगा तो। नहीं नहीं नहीं, उनका मैंने क्या कहा था पहले, सबका तो समान ही काल होता है ना, परंतु यहाँ उसमें भी अनिवृत्तिकरण से वो समान काल होगा, आठवें में थोड़ा डिफरेंस पड़ सकता है। आगे पढ़ते हैं 152 पृष्ठ पर। तिन्नम उवसामगानम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च जहन्येन एक समयम, जो हमने ओघ में देखा था। शुक्ल लेशा वाले अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थानवर्ती तीनों उपशामक जीवों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है। यह सूत्र सुगम है। उपकस्येन वासपुदत्तम, शुक्ल लेशा वाले तीनों उपशामकों का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्त्व है। यह सूत्र भी सुगम है। आपका क्या कहना है कि किस वेद से चढ़ा है उसके अनुसार कुछ फर्क पड़ता है क्या? उपशमने का काल अलग होगा, ये शंका हाँ हो सकते है, पॉसिबिलिटीज कुछ अलग अलग। वो कौन सा पहला करता है उसमें बात है। सब वो तो नवे में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, शुक्ल लेशा है उसकी बात नहीं है। वो जघन्य और उत्कृष्ट अंतर घटित किया सातवें का, तो उसमें कोई सर्व दीर्घ काल बताया था ना, तो उसमें कोई अंतर पड़ता है, तो आठवें गुणस्थान के काल में कोई अंतर पड़ता होगा शायद। ये अल्प बहुत में कहीं आया होगा तो ही मिला क्या? नहीं, यहाँ पर भी अल्पभूत तो बताया है। यह तो जीवों की अपेक्षा से बात, संख्या की अपेक्षा बात है यहाँ पर, काल की बात तो उसमें आएगी ना। ठीक, तो मेरा प्रश्न है, आठवें के अंतर के लिए उसको ऊपर भेजकर वापस आए, ग्यारहवें का अंतर कैसे घटित करेंगे एक जीव की अपेक्षा? आप क्या देखते हैं? एक जीव का अरे अंतर ही नहीं होगा, अंतर ही नहीं होगा। ग्यारहवें वाला भले आठवें तक आया, सातवें तक वो शुक्ल लेशा में आया, बाद में उसके तो नील तो हो नहीं है, नील नहीं अपने शुक्ल से पद्म पी तो हो नहीं है। दोबारा श्रेणी चढ़ते समय नीचे जब सातवें छठे में आया तो कितने बार उसके तो लेशा पलटेगी, फिर शुक्ल होकर ऊपर चढ़ेगा। कैसे हुआ? लेशा पलटे ना, आठवें का नौवें का दसवें का तो अंतर घटित हुआ, ग्यारहवें का नहीं होगा। इसे हम पढ़ने के पहले, क्योंकि सब खाली पढ़ते तो वो स्ट्राइक नहीं होता है, हम स्वयं विचार करेंगे तो बात ख्याल में आती है ना। अभी हम इसलिए यहाँ तीन ही गुणस्थान लिए, पहले चारों उपशामक नहीं लिए, तीन लिए है ना। तो नाना जी उनकी अपेक्षा तो ठीक है, एक समय और वर्ष पृथक्त्व हर जगह है। अब एक जीव की अपेक्षा बताएंगे। एक जीवम पड़ुच्छ जघन्य न अंतमूर्तम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। उपकस्य न अंतमूर्तम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर अंतर्मूर्त है। इन दोनों सूत्रों का अर्थ कहने पर क्षिप्र ने लघु काल से उपशम श्रेणी पर चढ़कर उतरे हुए जीवों के जघन्य अंतर कहना चाहिए, तथा चिर यानी दीर्घ काल से उपशम श्रेणी पर चढ़कर उतरे हुए जीवों के उत्कृष्ट अंतर कहना चाहिए। ये अभी पेज 52 यानी उसमें भी उपशम श्रेणी का काल जुदा जुदा लिया है। हरेक के लिए लिया, हरेक गुणस्थान के लिए। नहीं, वो ऐसा भी नहीं कि नौवे का और दसवें का ग्यारहवें का वही होगा, ऐसा भी नहीं लिया।
तो
सेम होता है उसका काल भी, हमने सेम ही देखा था। हम इसके लिए कुछ आगे कहीं आती है क्या देखिए। एक सौ पचपन पर आए ना अभी, मेरा पेज उल्टा उलट गया एक्स्ट्रा। वसंत कसाय वीदराग छदुमत्थानम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्च जहन्ने ने एक समय। शुक्ल लेशा वाले उपशांत कसाय वीतराग छदमस्थों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवन की अपेक्षा जघन्य से एक समय अंतर है। यह सूत्र सुगम है। जो उपशम श्रेणी का अंतर है नाना जीवन की अपेक्षा, उपकस से न वास पुधत्तम उक्त जीवों का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक्व है, यह सूत्र भी सुगम है। एक जीवम पड़ुच्च नत्य अंतरम निरंतरम है ना, ये अभी हमने पूछा था ना आपको। उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, क्योंकि उपशांत कषाय वो एक मात्रा एक्स्ट्रा हो गई शाम है। उपशांत कषाय गुणस्थान से ऊपर उपशांत कषाय जीव के द्वारा प्रतिपद्यमान गुणस्थान का अभाव है, यानी ग्यारहवें से वो ऊपर प्राप्त हो ऐसा कोई गुणस्थान नहीं है, एक बात। तथा नीचे उतरे हुए जीव के भी अन्य लेशा के संक्रमण के बिना पुनः उपशांत कषाय गुणस्थान का ग्रहण हो नहीं सकता। अन्य लेशा का संक्रमण यानी अभी शुक्ल में से वो पद्म होगा, पद्म में से पीत होगा, पीत में से फिर पद्म शुक्ल होकर फिर वापस श्रेणी चली जाएगी, क्योंकि उसमें तो हजारों बार बीच में छठा सातवां भी होगा, उसमें भी कितने बार उसका लेशा पलटेगा। विशेषार्थ उपशांत कषाय गुणस्थान के अंतर का अभाव बताने का कारण यह है कि ग्यारहवें गुणस्थान से ऊपर तो वह चढ़ नहीं सकता, क्योंकि वहां पर क्षपकों का ही गमन होता है, और यदि नीचे उतरकर पुनः उपशम श्रेणी पर चढ़े तो नीचे के गुणस्थानों में शुक्ल लेशा से पीत पद्मादि लेशा का परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर एक लेशा के काल से गुणस्थान का काल बहुत बताया है, नीचे के गुणस्थानों में नहीं छठे सातवें में। चदुन्नम खवगा ओघम, शुक्ल लेशा वाले चारों क्षपकों का अंतर ओघ के समान है। जो क्षपकों का अंतर, क्योंकि वो शुक्ल लेशा वाले ही होते हैं, तो क्या कहेंगे एक जीव की अपेक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर कितना होगा, एक समय और छह महीना। हाँ, इसलिए ओघ के समान कहा, यानी नाना जीवों की अपेक्षा एक समय से छह महीना और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। उसको निरंतर कहते हैं। सजोगी केवली ओगम, शुक्ल लेशा वाले सहयोगी केवली का अंतर ओघ के समान है। आशा पे नाना जीवों की अपेक्षा कितना अंतर होगा तेरवे गुणस्थान का, निरंतर है, बहुत अच्छा। और एक जीव की अपेक्षा देखो, वो आप जो नाना जीवों की अपेक्षा बताना चाहते हैं वो तेरवे गुणस्थान के लिए लागू नहीं होता, हमेशा ही तेरवे गुणस्थान वाले अरिहंत भगवान विद्यमान रहेंगे ही रहेंगे। जैसे हमने देखा चौथा पांचवा छठा सातवा गुणस्थान हमेशा रहता है, तेरवा वाले भी हमेशा होगी जी। हाँ यही, एक जीव की अपेक्षा भी अंतर नहीं है, क्योंकि तेरवे वाला चौदहवे में जाके सिद्ध होगा, वापस क्यों चौदहवे तेरवे में आएगा। तो ये दोनों सूत्र सुगम है। इस प्रकार लेशा मार्गणा समाप्त हुई। भवियानुवादेन, तो भव्य जीवों के गुणस्थान एक से बारह, आप तेरह और एक हाथ बढ़ा दो। भव्य तो एक से चौदह है, भव्य सिद्धि वो संगी मार्गणा में वो तो एक से बारह है। तो भविष्य
संगी
मार्गना, क्योंकि अरिहंत से अरिहंतों को संगी असंगी से रहित कहते हैं। सिद्धों में तो भव्यत्व गुण तो तभी व्यक्त, अभी वो भव्य नहीं, होने योग्य नहीं कहीं हो चुके, इसलिए सिद्धों को भव्य नहीं कहेंगे ना, अभव्य भी नहीं कह सकते। कैसे अपेक्षा, कौन सी ऐसे कहीं पर भी कुछ अपेक्षा नहीं। भव्य का अर्थ तो होने योग्य, अभी क्या बाकी है, हो चुके। होने योग्य कब कहेंगे, मराठी में है ना, जिसकी शादी होनी है उसको सौकांग लिखते, सौभाग्य कांक्षिणी। अब मैरिज होने के बाद क्या लिखेंगे, सौभाग्य होती कहेंगे, कांक्षिणी क्यों कहेंगे, हो गए ना अभी वो कांक्षिणी नहीं, वो सौभाग्य की इच्छा करने को तो सब बताना पड़ेगा। मराठी में खास ये फर्क करते हैं, ऐसा
नहीं
क्योंकि उसमें लिखते हैं ना, अभी जिसके मैरिज होनी है तो उसके लिए सौभाग्य का कांक्षा नहीं लिखते हैं। सौभाग्यवती हो जाने के बाद सौ लिखेंगे, कांक्षा नहीं क्यों लिखेंगे, हो गए ना कांक्षा पूरी हो गई। आप क्या लिखते हैं, असौ लिखते हैं, अखंड सौभाग्य इन्हें गुजराती में है, असौ लिखते हैं क्योंकि हमने जब नहीं लिखते पहले जमाने में उनकी पद्धति से असौ लिखते थे, अखंड सौभाग्य। ये क्योंकि अपना ट्रांसलेशन हुआ ना इसलिए मुझे मालूम है, वो अपने दीपक भाई ने बताया था हमको। हाँ ये भव्य सिद्धि की बात चल रही, भव्यानुवाद है ना, भव सिद्धि ऐसु मिच्छा दिट्ठी पौड़ी जाव अजोगी केवलित्ती ओगम, है ना, पहले से तो ये तो ओके समान ही उनका होगा, क्योंकि उन्हीं में तो अंतर सिद्ध होगा, मिच्छा दृष्टि का, चौसे का, तीसरे का, अभव्यों के तो एक मिच्छा तो एक गुण स्थान है, अंतर का सवाल ही नहीं है। भव्य मार्गणा के अनुवाद से भव्य सिद्धिकों में मिथ्या दृष्टि से लेकर अयोगी केवली तक प्रत्येक गुणस्थान वर्ती भव्य जीवों का अंतर ओघ के समान है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि सर्व प्रकार ओघ प्ररूपणा से भव्य मार्गणा की अंतर प्ररूपणा में कोई भेद नहीं होता, क्योंकि पहले से चौथे में जाना वगैरह आना ये तो भव्यों में ही होगा, भव्य में बात ही नहीं होती है, अंतर का सवाल नहीं है। अभव सिद्धियाणम अंतरम केवचिरम काला दोहोदी नाना जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम। अभव्य सिद्धि जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, क्योंकि अभव्य जीवों के प्रवाह का कभी विच्छेद नहीं होता, और जो अभव्य वो अभव्य ही रहेंगे कायम, ऐसा नहीं कि कुछ अभी वो अभव्य से भर गए, ऐसा भी नहीं है। एक जीवम पड़ुच्चन अत्यंतरम निरंतरम, अभव्य जीवों का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, क्योंकि अभव्य में अन्य गुणस्थान के परिवर्तन का अभाव है। इस प्रकार भव्य मार्गणा समाप्त हुई। अभव्य में ना मार्गणा का अंतर होता है और ना ही उसके गुणस्थानों का। अब सम्यक तो मार्गणा चलेगी, सम्यक तो मार्गणा के भेद मालूम है, बोलो। हाँ कितने हुए, छह। हाँ एक सम्यक तो कितने प्रकार के पूछेंगे तो तीन हो गए। सम्यक तो की अपेक्षा से जीवों के भेद करेंगे तो कोई मिथ्या दृष्टि वाले, कोई सासाधन रुचि वाले, कोई मिथ्या मिश्र रुचि वाले, ऐसा कहें। देखो सम्मत्तानुवादेन सम्मादिट्ठिषु असंजत सम्मादिट्ठिनम अंतरम केवचिरम कालादो होदि नाना जीवम पड़ुच्च नथ्य अंतरम निरंतरम। सम्यक तो मार्गणा के अनुवाद से सम्यक दृष्टियों में, ये सम्यक दृष्टि इतना ही कहा, उसके क्षायिक सर्वश्रमिक भेद नहीं किए, सम्यक दृष्टि रखे तो नाना जीवों की अपेक्षा चौथा गुणस्थान हमेशा ही रहेगा ना सम्यक दृष्टियों का। ये नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, नाना जीवन परिचन अथ्य अंतरम निरंतरम। सम्यक तो मार्गणा के अनुवाद से सम्यक दृष्टियों में असंयत सम्यक दृष्टियों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है निरंतर है। यह सूत्र सुगम है। एक जीवन परुच्च जघन्य न अंतोमूर्तम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। ये कैसे घटित करेंगे अंतर, अभी चौथे गुणस्थान का अंतर कैसा घटित करेंगे? हाँ बोलो, चौथे गुणस्थान के अंतर के लिए क्या करते हैं हम? नीचे नीचे लाते हैं, तो नीचे वो सम्यक दृष्टि रहेंगे क्या मिथ्या दृष्टि? इसलिए आपको पूछा सम्यक तो रखना है कायम, तो ऊपर जाके फिर आएगा, पांचवे में जाके लाएगा वो। तो जैसे उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, जैसे एक असंयत सम्यक दृष्टि जीव संयमासंयम गुणस्थान को प्राप्त होकर सर्व जघन्य काल से पुनः असंयत सम्यक दृष्टि हो गया, इस प्रकार अंतर प्राप्त हुआ। समझ में ना, क्योंकि वो सातवें में नहीं भेजा तो सातवां छठा बहुत बार करता है, फिर बाद में नीचे आता है, इसे संयमासंयम को प्राप्त करके नीचे लाया। उक्कसेन पूर्व कोड़ी देशुणम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम पूर्व कोटि है, उसको सम्यक दृष्टि रखना है, चौथे में रखना है। तो क्या करना पड़ेगा अंतर के लिए? अभी ऊपर के गुणस्थानों में ले जाना चाहिए, तो ऊपर के गुणस्थानों में कितने काल तक रहेगा? एक ही भाव रहेगा, पहले चौथे में था, आठवें साल के बाद उसने संयम या संयम धारण किया और उसी से मरा और फिर ऊपर देव में गया, तो अर्ले समय को प्राप्त करने के लिए उसको तीरंज वाले को पांचवें में भेज देंगे, वो जल्दी जाएगा। देखो उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम पूर्व कोटि है। मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक मिथ्या दृष्टि जीव पंचेंद्रिय संगी समूर्छिम पर्याप्त तीर्यंचों में उत्पन्न हुआ। ये सारी मिथ्या दृष्टि लिया हुआ, छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो, विश्राम ले, विशुद्ध हो, वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ, पुनः संयमासंयम गुणस्थान को जाकर, यानी वेदक सम्यक के साथ चौथे में गया है, वहां अंतर्मूत रहने के बाद ही पांचवे में जाए, पुनः संयमासंयम गुणस्थान को जाकर अंतर को प्राप्त हो, यानी जब पांचवे में गया तो चौथे का अंतर चालू हो गया, पूर्व कोटि वर्ष तक जीवित रहकर मरा और देव हुआ। मरते समय तक पांचवा गुणस्थान, देव में जाते ही पहले समय से उसका चौथा गुणस्थान, तो अंतर समाप्त हुआ। इस प्रकार चार अंतर्मूर्तों से कम पूर्व कोटि वर्ष असंयत सम्यक दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर होता है। ख्याल में आई कैसे किया? तीरंज में इसलिए लिया, वो समूर्छन में वो वैदिक समय तो जल्दी प्राप्त कर सकता है, इसलिए उसको लिया। संजदा संजद पहुड़ी जावो वसंत कसाय वीदराग चदुमत्था ओधिनानी भंगो, संहिता संहित गुणस्थान से लेकर उपशांत कषाय वीतराग चदमस्थ गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टियों का अंतर अवधि ज्ञानियों के समान है। जिस प्रकार से अवधि ज्ञान मार्गणा में संहिता संहित आदिकों के अंतर की प्ररूपणा की है, उसी प्रकार यहाँ पर भी करनी चाहिए, क्योंकि उससे यहाँ पर कोई विशेषता नहीं है। पेज नंबर 116-17 निकालो। यहाँ 116 पर निकालना, वहां पर भी वो सम्मूर्छम में उत्पन्न नहीं कराया। देखो तीन ज्ञान वाले संहिता संहितों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर है। यानी ना मोह कर्म के 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला एक जीव मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, 8 वर्ष का होकर सहिमा स्वयं और वेदक सम्यक्त को एक साथ प्राप्त हुआ, पुनः अंतर्मूर से संयम को प्राप्त करके अंतर को प्राप्त हुआ। एक तो त्यांना देवात पाठवायचे आणि अधिक काल सम्यक्त सहित रखना, एक बात। और वहां अवधि ज्ञानी को उसमें ना बोला है पांचवे गुण स्थान में, पांचवे के लिए नहीं कहा उसमें, चौथे में तो किया था उन्होंने। यानी उनके सहिमा सेम हो सकता है पर अवधि ज्ञान और औक्षम समय तो नहीं हो सकता। हाँ औक्षमिक तो होता नहीं है, ये बताए ना 118 पेज पर नीचे से समाधान में है। देखो नीचे से चौथी लाइन पृष्ठ पर, संगी समूर्छिम पर्याप्त को में संयमा संयम के समान अवधि ज्ञान और उपशम समित की संभवता का अभाव है। परंतु वहां तो 115 पर उन्होंने अवधि ज्ञानी बनाकर उसको ऊपर भेजा था, उसका निषेध किया है उन्होंने बाद में। अभी हम जो पढ़ रहे थे ना, अभी दिखा ना आपको 116 पेज पर, यानी फिर उन्होंने दो तरह से बताया, दो बार 33 सागर में उत्पन्न कराया था, यानी 33 सागर में उत्पन्न किया, फिर मनुष्य में आया, फिर शायिक धारण करके फिर गया। पहले भव में उससे सहिमा सहिम धारण किया, पूर्व कोटि वाले पहले भव में सहिमा सहिम धारण किया मनुष्य ने, फिर सहिमा सहिम के बाद संयमी हुआ, संयमी होकर 33 सागर में उत्पन्न हुआ, वहां से पूर्व कोटि में आया, समय दृष्टि तो था ही, वहां डायरेक्ट संयम ही धारण करके रहा, पांचवें गुणस्थान में नहीं आया, बीच वाले पूर्व कोटि में, फिर देवों में उत्पन्न हुआ, वहां 33 सागर में वो सर्वार संयम धारण कर जल्दी कर सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि तो पांचवें गुणस्थान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है, बिना पांचवें के डायरेक्ट वो चौथे से संयम ही हो गया, पांचवें में जाने की कंडीशन नहीं है, जा सकता है, नहीं जा सकता ऐसा भी नहीं है, डायरेक्ट संयम भी धारण कर सकता है। जब तीसरी बार वो नीचे आया तो फिर क्षायिक समयत्व को धारण किया और एक समय कम 33 सागर में, पहली बार जब पूर्व कोटि का था, पांचवे का 8वें साल के बाद पांचवा हुआ, पांचवे के बाद संयम ही रहा, फिर वहां चौथे में गया देव में 33 सागर में, फिर आया पूर्व कोटि में, उसमें चौथा और संयम इतना ही लिया, वहीं पर उसने क्षायिक प्राप्त किया, फिर ऊपर गया, अब 33 सागर माइनस एक समय वाला लिया, फिर नीचे आया, तो वहाँ पर भी उसने दीर्घ काल तक रहकर संयमा सेम को प्राप्त किया, दीर्घ काल चौथे में रखा उसने, और बाद में संयमी होकर वो श्रेणी चढ़कर गया। तो वैसे यहाँ पर भी समझ लिया क्योंकि उससे यहाँ पर कोई विशेषता नहीं है। और छठे सातवें के लिए 120-121 पर बताया था उन्होंने। वहां पर भी साधिक तृतीय सागरोपम लिया था, उत्कृष्ट अंतर के लिए। देखो शुरुआत में कैसा लिया, प्रमत्त अप्रमत्त था, प्रमत्त अप्रमत्त श्रेणी चढ़ाई, और फिर प्रमत्त अप्रमत्त आने के पहले ही मरकर देव हुआ, इन्हें अंतर में वो भी बढ़ा दिया उसका। वहां एक समय कम 33 में उत्पन्न हुआ, फिर वहां पूर्वकोटि की आयु में आया, अंतर्मूर्त जब बाकी रहा तब प्रमत्त संयुक्त हुआ, इन्हें उसको लेट में लेट संयमी बनाया और बाद में मोक्ष भेज दिया। ये तो हमने देखे उसके तो अलग अलग गिनाए थे, पहले वाले अंतर्मूर्त, बाद वाले अंतर्मूर्त, सातवें के काल वगैरह उसकी कंपेयर की, तो ये हमने पढ़ा था। वैसे यहाँ समझना आगे, चदुन्नम खवगा अजोगी केवली ओगम, कौन सी मार्गणा चल रही है याद है कि भूल गए? नहीं तो मैंने कहा शुक्ल लेसा में से बाहर आए कि नहीं आए। सम्यक दृष्टि, चारोक, शपक और अयोगी केवलियों का अंतर ओग के समान है। इन्हें नाना जीवन की अपेक्षा वो एक समय और 6 महीना और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं होगा। सजोगी केवली ओगम, सम्यक दृष्टि सयोगी केवली का अंतर ओग के समान है, नाना और एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है। ये दोनों ही सूत्र सुगम है। तो एक सम्यक दृष्टि इन जनरल बात की, अब कंडीशन लगाई औपशमिक है, कक्षायिक है, कक्षा औपशमिक है। खय सम्मादिट्ठिसु असंजत सम्मादिट्ठिनम अंतरम केवचिरम कालादो होदी नाना जीवम पड़ुच्छन अस्थि अंतरम निरंतरम। क्षायिक समय दृष्टियों में असंयत समय दृष्टियों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, क्योंकि क्षायिक समय दृष्टि हमेशा ही पाए जाए। एक जीव की अपेक्षा कैसा घटित करेंगे? अरे ऊपर के गुणस्थान में जाके आए ना, वापस शाइक का शाइक रहा ना, वो चौथे तक तो शाइक ही है ना, चौथे से ऊपर कहीं पर, पांचवे में जाकर वापस लौटा। एक जीवम पड़ुच जहन्ने न अंतो मुहूर्तम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है। जैसे एक असंयत समय दृष्टि जीव अन्य गुणस्थान को जाकर, वहाँ उन्होंने संयता संयता आदि लिखा है, परंतु अभी जो हमने पढ़ा था ना सामान्य समय दृष्टियों में, केवल उन्होंने संयता संयत कहा था, सेमा सेम गुणस्थान को प्राप्त होकर, और यहाँ उन्होंने आदि लिखा, ठीक है, सबका मिलकर वो अंतर्मूर्त जितना होगा जघन्य उतने में आ गया। सर्व जघन्य काल से पुनः संयत समय दृष्टि हो गया, इस प्रकार अंतर लब्ध हुआ। उक्कस्य न पूर्वकोड़ी देशुण, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम पूर्वकोटि वर्ष है, क्योंकि क्षायिक चौथे वाला उसका अंतर कैसे होगा, वो पांचवे में या छठे सातवें में रहेगा तो मरकर देह होगा, फिर अंतर समाप्त हो गया उसका, तो कुछ कम पूर्व कोटि कहेंगे। जैसे एक जीव पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न होकर गर्भ से लेकर 8 वर्ष का हुआ और दर्शन मुनि का क्षय करके क्षायिक समय दृष्टि हुआ, क्योंकि उस भव में उसने क्षायिक समय तो प्राप्त करना है ना, और बाद में देव में भेजेंगे उसको, वहां अंतर्मूर्त रह करके सेमा सेम या संयम को प्राप्त होकर और पूर्व कोटि वर्ष बिताकर, बिताकार हुआ, बिताकर मरण को प्राप्त हो देव हुआ, क्षायिक का क्षायिक हुआ और उसका ये भव समाप्त हुआ, वहां चौथे में आ गया वापस। इस प्रकार 8 वर्ष और 2 अंतर्मूर्तों से कम पूर्व कोटि वर्ष असंयत क्षायिक समय दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर है। संजदा संजद होमत संजद अपमत संजदानम अंतरम केवचिरम कालाद होदी नाना जीवन पड़ुच्छ नथ्य अंतरम निरंतरम। क्षायिक समय दृष्टि संयता संयत प्रमत्त संयत और अप्रमत्त संयत जीवों का अंतर कितने काल तक होता है, नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। यह सूत्र सुगम है। एक जीवम पड़ुच्च जहन्येन अंतोमूर्तम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर अंतर्मूर्त है, यह सूत्र भी सुगम है, यानी अन्य गुण स्थान को प्राप्त होकर वापस लौटा। जैसे ओग में वगैरह देखते हैं, ऐसे यहाँ पर पांचवे वाले को चौथे में जाकर वापस लाओ या संयम धारण करके आया, केवल सातवें के लिए श्रेणी चढ़ाकर सूक्ष्म श्रेणी चढ़ाकर वापस लाना है। उक्कसेन 33 सागरोवमानी सागरीयानी, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर साधिक 33 सागरोपम है। जैसे एक जीव पूर्व कोटि वर्ष की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, गर्भ को आदि देकर लेकर 8 वर्षों के पश्चात अंतर्मूर्त से क्षायिक सम्यक्त को प्रस्थापन कर विश्राम ले सेमा सेम को प्राप्त कर संयम को प्राप्त हुआ, यानी संहिता संयम का अंतर के लिए क्या हुआ, पहले क्षायिक किया फिर पांचवे में आया और फिर वो तो संयम धारण किया। संयम सहित पूर्व कोटि काल बिताकर मरा, ये पूर्व हुआ, पूर्व कोटि काल बिताकार हुआ, बिताकर मरा और एक समय कम 33 सागरोपम की आयु स्थिति वाले देवों में उत्पन्न हुआ, वहां से च्युत हो पूर्व कोटि की आयु वाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ, जीवन के अल्प अवशेष रह जाने पर संयमा से उनको प्राप्त हुआ, यानी चौथे में अधिक समय तक रहा, तो जब संयमा से उनको प्राप्त हुआ तो उसका अंतर समाप्त हुआ। इसके पश्चात अप्रमत्तादि गुणस्थान संबंधी 9 अंतर्मूर्तों से सिद्ध हो गया। इस प्रकार 8 वर्ष और 14 अंतर्मूर्तों से कम 2 पूर्वकोटियों से साधिक 33 सागरोपम काल क्षायिक समय दृष्टि संयता संयत का उत्कृष्ट अंतर होता है। बाकी चर्चा कल करेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी सदा देत हो।